ஓம் சிவாய நம. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆல், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யுவர் அபவுட் டு லிசன் தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்தோத்திரம் பிரசன்டட் பை சுவாமி ஸ்ரீ பிரத்யக் போதானந்தஜி மகாராஜ். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
யுவான் சிஷ்ய ஆர் குரு கைசா ஹோதா ஹை? உல்டா. யஹாம் பில்குல் உல்டா ஹை. யே தோ பில்குல் யுவான் ஹை और शिष्य क्या है? सब बुड्ढे हैं. दूसरा आश्चर्य, गुरु मौन के द्वारा ही व्याख्यान किया. गुरोस्तु मौन व्याख्यानम. हाँ, और शिष्य के सब संशय का उच्छेद हो गया, नाश हो गया. विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते சர்வ சம்சயாஹ க்ஷீயந்தே சாஸ்ய கர்மாணி தஸ்மின் திருஷ்டே பராவரே. அபி தேகோ ஆச்சரிய கா ஹை. சிஷ்ய விருத்த ஹை, ஜோ ஜீவ் ஹோதா ஹை, கோட்டி கோட்டி சரீர் மே ஜன்ம கரண கர்கே தியாக கர்தே கர்தே வோ க்யா ஹோ கயா ஹை? அபி क्या हो गया? वृद्ध हो गया है. एक भक्त ने कहा भगवान को, मुझे आगे आने वाले दुख की कोई चिंता नहीं है मरने के बाद, क्योंकि मैं सब शरीर में जाके सब प्रकार का दुख भोग चुका हूं. मेरे लिए कोई दुख नया नहीं है. पर आज एक नया दुख आ गया है. भगवान कहते क्या दुख है? कि आप सामने हैं और फिर भी मैं दुखी हूं, ये दुख नया है. आपकी सन्निधि में अर्जुन विषाद योग हो रहा है. देखो ये, इसको दूर करिए. तो दूसरा अर्थ होता है वृद्धा शिष्या का. अर्थ होता है जो शिष्य बुद्धि से परिपक्व हो चुके हैं. कल मुझे टाइम नहीं मिला बोलने का. दो चीज होती है समय में, देह की दृष्टि से और मन की दृष्टि से. आप खाते पीते रहे और विटामिन की गोली लेते रहे, च्यवनप्राश भी खाते रहे, थोड़ा योगासन करते रहे, जो भी है, ये शरीर क्या होता है? धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है. एजिंग, उम्र होना हमारे हाथ में नहीं है. उनको रोक भी सकते हैं, नहीं है. यू एज एवरी डे, यू एज. पर एक बात याद रखना, जैसे शरीर की उम्र होती है, इसके साथ साथ मन भी परिपक्व होता है कि नहीं होता है? वही बचपना अंदर है अभी, वही सब खेल खिलौने की चीज अच्छी लगती है, वही नाटक चेटक अभी भी वही अच्छा लगता है. देयर इज नो ग्रोथ इन साइड. इसके लिए यत्न किया जाता है. फिजिकली यू एज, इमोशनली यू हैव टू मैच्योर. मेरे लड़के ने मुझे स्वामी जी फोन नहीं किया, अमेरिका गया, हमको ईमेल भी नहीं भेजता है, ये सब क्या है? अंदर गड़बड़ है. अभी तेरे को बच्चे की क्या जरूरत है? वो अपनी जगह है, तू अपनी जगह भजन कर. स्वामी जी आप ऐसी बात करते हैं, हमको ये सब क्या है? अंदर गड़बड़ है. इन्होंने ये कहा, उनका ये हो गया, अभी भी वही बात है. देयर इज नो, यू मे एज फिजिकली, इनसाइड बचपना. 80 years child, 80 साल का बच्चा. तो इसको कहते हैं कि आंतरिक विकास के लिए, परिपक्वता के लिए, ये कर्म करते करते अमुक प्रकार की भावना से जब कर्म करते हैं तो चित्त में प्रसाद आता है, परिपक्वता आती है, जिसको श्री कृष्ण ने संयुक्त है, इसको कहते हैं मैच्योर योगी. माने द्वंद्व सहिष्णु बने. सुख दुख लाभा लाभे जया जयो इस सब में समत्व जिन्होंने प्राप्त किया है, ये नहीं कि आप समत्व प्राप्त कर लो, उसका उपाय बहुत भारी है। उनमें से जो गुजरा है आज कुछ भी हो जाए वो प्रसन्न चित्त है और कुछ भी आगे होने का है उसके लिए भी तैयार है। ये जो पॉइज है इनसाइड, इसको कहते हैं वृद्धा। शिष्य सब है वो तत्व ज्ञान को ग्रहण करने के लिए सबके सब क्या है तैयार बैठे हैं। आप देखेंगे श्रीमद् भागवत की कथा में 60,000 ऋषि मुनि विराज मानते हैं, सब वयोवृद्ध, और सुखदेव जी 16 साल की उम्र, युवा। पर इस कार्तिक यात्रा शरीर से नहीं मतलब है, वो जानता है कि आत्मा नित्य है सत्य है, इसलिए देह की उम्र के साथ आत्मा की उम्र आगे बढ़ती नहीं है पीछे घटती नहीं है, क्योंकि वो क्या है नित्य है इसलिए युवान है। बराबर समझ में आया? अभी दूसरा कह रहे शिष्यास्तु छिन्न संशया, शिष्य के सब संशय दूर हो गए। इस संशय का अर्थ होता है ना समझी, ये ठीक है कि ये ठीक है। ब्रह्म विद्या का अध्ययन करे कि संसार का काम करे, इस उपाय से हमारा दुख होगा दूर होगा कि इस उपाय से दुख दूर होगा, आत्मा एक है कि अनेक है, मरने के बाद आत्मा कहां जाता है। अभी पहले बताया आत्मा अद्वितीय एक है व्यापक है, फिर जाता कहां है? देखो दो प्रश्न में गड़बड़ती नहीं, वो कहते आत्मा तो स्वामी जी नित्य अजर अमर है व्यापक है और फिर मरने के बाद जाता है। हे व्यापक जाएगा नहीं और जो जाएगा सो व्यापक होगा नहीं, अल्प में गति होती है व्यापक में गति नहीं होती है। सबका आत्मा अलग अलग दिखता है क्योंकि आपका दुख मेरा दुख अलग है, इसलिए आत्मा भिन्न है कि एक है, ये सब संशय होते हैं। जिज्ञासु का नाम ही क्या है डाउट्स आर देयर। मैं ब्रह्म को जान सकता हूं कि नहीं वो भी डाउट है। प्रमाण से ज्ञान होगा कि दूसरा कोई उपाय करने से ज्ञान होगा डाउट है। तो जब तत्व ज्ञान से बोध हो जाता है तो सर्व संशय की निवृत्ति हो जाती है। सीधा दृष्टांत देखो, अगर रस्सी का ज्ञान नहीं है तो उसको सर्प है कि माला है कि भूछिद्र है कि दंड है ये क्या है संशया। एक बार रस्सी का ज्ञान हो गया फिर संशया सब दूर हो गए। एक बार अपने को जान लिया, मैं दुखी हूं, मैं मूर्ख हूं, मैं छोटा हूं, मैं मरने वाला हूं, मैं स्त्री हूं, ये सब क्या है संशया। सर्व संशय की निवृत्ति उन्होंने करी। अभी सबसे बड़ी बात है, यहां लोग गड़बड़ा जाते हैं, मौन व्याख्या। मौन मानी होता है चुप रहना बोलना नहीं। देखो आप लोग भी शांति से बैठे मौन है इस समय। गुरु अगर मौन होकर प्रवचन कर सकता है क्या? मुझे हर रोज एक ही काम करना है, गिरीश पे लाएंगे मैं आगे एक घंटा चुपचाप बैठा रहूंगा और चला जाऊंगा, इसमें प्रवचन होगा? प्रवचन में मौन नहीं है, मौन में प्रवचन नहीं है। तो मौन व्याख्यानम का अर्थ क्या होता है कि समग्र वेदांत शास्त्र कोई शब्द के अर्थ का निरूपण नहीं करता है, शब्द का सामर्थ्य नहीं है कि वो ब्रह्मात्मिका का बोध करा सके। शब्द का जो अर्थ है वो प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण से बांधित है। मैं कहूंगा घड़ा तो आपको दिखता है, मैं कहूंगा कुर्सी तो आपको दिखती है, मैं कहूंगा कलकत्ता तो आप अनुमान कर सकते जैसे बॉम्बे सिटी है तो वो भी सिटी है, लोनावाला ऐसे, तो ये सब अनुमान से जानते हैं, शब्द का अर्थ है। पर जो ब्रह्मात्मा है वो कोई शब्द का अर्थ नहीं है, क्योंकि वो वस्तु नहीं है, चीज नहीं है बाहर की। और उसका बोध कराने के लिए अभिधान वृत्ति से, मानी शब्द के अर्थ के रूप में नहीं, उसके लिए लक्षणा की जाती है। तो जिसको इंप्लाइड मीनिंग इंग्लिश में कहते हैं, ऐसे शब्द का उपयोग करके जो शब्द से नहीं समझाया जा सकता है, फिर भी उस शब्द का इस्तेमाल करके उसको समझाया जाता है, इसका नाम क्या है? प्रमाण। और वो लक्षणा से बोध कराता है। इसलिए कहते हैं मौन व्याख्यानम, जो समझना है वो तो साइलेंस ही है। आगे आएगा अगले के श्लोक में, तो इस प्रकार से मौन व्याख्या प्रगटिति पर ब्रह्म तत्वम युवानम वर्षिष्ठान्ते वसदृशिगणै आवृतम ब्रह्म निष्ठैहि आचार्येन्द्रम करकलित चिन्मुद्रमानंद रूपम स्वात्मा रामम मुदित वदनम दक्षिणामूर्ति मीडे। मेरे पीछे बोलना, निदये सर्व विद्यानाम विषजे भव रोगिणाम गुरवे सर्वलोकानाम दक्षिणामूर्ति दक्षिणामूर्तये नमः नमः। प्रफी भावे हमारा ये नमस्कार है, किनको नमन कर रहे हैं? श्री दक्षिणामूर्ति को। दक्षिणा अभिमुखा मूर्ति ही यस्य सह दक्षिणा मूर्ति ही शिवः। दक्षिणा अभिमुखा मूर्ति ही यस्य सह शिवः दक्षिणा मूर्ति। आप लोग को मालूम है चार दिशा मुख्य है, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण। दूसरी बात ये भी मालूम होना चाहिए, शास्त्र के अनुसार दक्षिण दिशा मृत्यु की दिशा है, मृत्यवे नमः। दक्षिणाभिमुख जो है दक्षिणा दिशा मृत्यु की है, कोई दक्षिण दिशा मृत्यु नहीं चाहता है। और उत्तर दिशा जो है वो अमृत स्वरूप है, मोक्ष स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। लोह चुंबक को भी रखेंगे तो जो उत्तर दक्षिण बताता है, तो आकर्षण वो सुई में जो है वो उत्तर की ओर है, और दूसरा जो भाग है फिर वो दक्षिण बताता है। अट्रैक्शन इज ओनली द नॉर्थ नॉट इन साउथ। इसलिए जो भी आनंद सुख चाहता है वो अपना मुख कहां रखेगा? उत्तर दिशा में। दक्षिण दिशा की ओर कोई देखना नहीं चाहता है, और मरने के बाद हमारे चरण दक्षिण दिशा में रखे जाते हैं, इसलिए सोते भी नहीं लोग दक्षिण दिशा में, चरण करके नहीं सोते हैं, क्योंकि वो मृत्यु की दिशा है। अब गुरु क्या है? गुरु दक्षिण दिशा की ओर देख रहा है, दक्षिणा व्हाट है? दक्षिणा अभिमुखा मूर्ति यस्य, दक्षिण दिशा की ओर देख रहे हैं। क्यों? मृत्युंजय। इस विद्या के द्वारा, ब्रह्म विद्या के द्वारा, आत्मा मृत्यु जन्म रहित है, ये बोध जिसको हो गया है। अहम व्हाट अजह, मैं जन्म रहित हूं। क्यों? नित्य हूं। जो काल में आता है उसका नाश होता है, आत्मा काल का भी प्रकाशक है, वो नित्य आत्मा मैं हूं। इसलिए गुरु जो है वो मृत्यु को तर गया है, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लिए, इसलिए उसको दक्षिण दिशा का कोई भय नहीं है। गुरु दक्षिण दिशा की ओर देख रहे हैं तो शिष्य कौन सी दिशा को देख रहे हैं? उत्तर दिशा को देख रहे हैं। और इसलिए ये शंकर भगवान दक्षिणाभिमुख होकर जो शिष्य मोक्ष चाहते हैं उनको उपदेश करते हैं। ठीक है, अर्थ आ गया? दक्षिणा मूर्तये नमः। और कैसे है? सर्व विद्यानाम निधये। दो प्रकार की विद्या है, द्वे विद्ये वेदितव्य, परा च अपरा। परा परमात्मक विषय विद्या, अपने आत्मा के सच्चे स्वरूप का ज्ञान जिस विद्या में है वो विद्या का नाम क्या है? परा विद्या, ब्रह्म विद्या, भूमा विद्या, गीता माता, ये सब आ जाएगा। आत्मा एक अद्वितीय है तो ब्रह्म विद्या भी कैसी है? एक है। विषय एक है इसलिए विद्या भी कैसी है? एक है। अनात्मा कितने हैं? गुजराती में गण्या गण्या ही नहीं, वीण्या तो है मारी बुद्धि में माई नहीं कहा है इतना है। एवरी ईयर वन डिसिप्लिन ऑफ नॉलेज दे डिस्कवर, दैट इज कॉल्ड साइंस। ये भी जानना है, इसको भी हमने जाना है करके, द गॉड पार्टिकल। तो अपरा विद्या ऋग्वेद यजुर्वेद शिक्षा कल्प व्याकरण अनेक है, ये सब विद्या परा और अपरा जिसमें है वो है दक्षिणामूर्ति। आपको एक बात बताता हूं, ज्ञान सिर्फ ईश्वर में ही है, ज्ञान स्वरूप ईश्वर है। सब विद्या का खजाना, सब विद्या का आश्रय परब्रह्म ही है। अगर इसकी मैं चर्चा करना चाहता हूं मुझे 3 घंटा चाहिए। ओके, शास्त्र योनित्वात्, शास्त्रस्य योनि कारणम तस्मात् शास्त्र योनि। ये समग्र शास्त्र जिससे प्रकट हुए हैं वो भी बिना प्रयास, तस्य निष्फसितम वेदः ऋग्वेदः यजुर्वेदः। इस मंत्र को भी लोग नहीं समझते, सीधा मंत्र है। लोग ऐसे ट्रांसलेशन करते हैं, भगवान के निश्वास का नाम ऋग्वेद है, भगवान की श्वासोश्वास क्रिया में वेद प्रकट होते। ये नहीं है भैया, वहां लिखा है कि जैसे हमारी सांस चल रही है इज इनवॉलेंटरी एक्शन, यू डोंट ब्रीथ, ब्रीथिंग हैपन्स अनलेस यू आर फॉलोइंग रामदेव बाबा, ये सब करेगा। देखो प्राणायाम कुछ करेगा तो प्राणायाम है, नहीं करेगा तो क्या है? श्वासायाम है ना। तो अपने आप सांस चलती है, तो सांस कैसे अनायास बिना प्रयास से चलता है, ऐसे जिस परब्रह्म से ये समग्र वेद आयास के बिना, चिंतन के बिना, सोचने बिना प्रकट हुए हैं, इसी का नाम है परब्रह्म, जिससे सब विद्या आई है। एक विद्या का ज्ञान प्राप्त करते करते हैं बाल क्या हो जाते हैं? अगर रहे तो सफेद हो जाएगा। प्राय पढ़ने वाले के बाल क्या होता है? चले जाते हैं, है हमारे साथ पढ़े हैं इनके चले गए। बड़ा फायदा है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? बालनेस को क्या बोलते हैं? गंजा, गंजा, गंजा होने में बहुत फायदा, हमको अच्छा लगता है। एक तो है कि जब शावर मानी स्नान करने खड़े रहे थे, पूरा फायदा होता है उसका, बाल रुकने वाला नहीं है बीच में। दूसरी बात यह कीड़े नहीं पड़ते हैं। तीसरी बात यह कंगन की जरूरत है क्या, कंगी की जरूरत नहीं है। चौथी बात है लड़ाई में कोई बाल पकड़ के खींच नहीं सकता, कितना फायदा है ना। और कभी जरूर पड़े तो दिखा दो, आईने की जगह यह भी काम करेगा, तो एडवांटेज। आइए, तो यहां कहते हैं कि सर्व एक एक विद्या प्राप्त करने में कितनी मेहनत है, एक एक विद्या में इतना समय लगता है। और अगर आप एक पुस्तक लिखे, इफ यू ऑथर अ बुक, हाउ मेनी आवर्स, हाउ मच थिंकिंग इज रिक्वायर्ड, वो भी कितनी टेक्स्ट को देख देख के उसका उदाहरण लेके लिखेंगे। मानी जिसने कुछ लिखा है उसकी बुद्धि को हम समझ सकते हैं कि कितनी विशाल होगी। पाणिनि आग पड़े अगर, इसको कहते हैं 600 और 5000 बिफोर बीसी, इट वॉज देयर, व्हाट अ क्लासिकल लैंग्वेज, ऑल रूल्स आर देयर। पाणिनीय व्याकरण के नियम जिन्होंने प्रकट किए उसकी बुद्धि कितनी होगी। तो जिससे सब वेद प्रकट हुए उसकी बुद्धि को क्या कहना, किमु वक्तव्यम तस्य सर्वज्ञत्वम, क्या बात करना सर्वज्ञत्वे, ये हमारा ईश्वर। पहले समझो ईश्वर सर्वज्ञ कैसे है, और वो ईश्वर को हम प्रार्थना करते हैं तमसो मा ज्योतिर्गमय। हमारे स्कूल में ये प्रार्थना को बहुत गुजराती में बोलते थे, ऊंडा अंधारेती प्रभु परम तेज ते तो लई जा, देर कैन नॉट बी बेटर प्रेयर, मोस्ट यूनिवर्सल प्रेयर। आप सबके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, दुनिया में जितनी समस्या है सबके सब किसके कारण है, ना समझी के कारण, बेवकूफी के कारण है। आपके घर में समस्या है वो किसके कारण है, ना समझी के कारण। और हम भगवान को प्रार्थना करते हैं कि हमको समझदारी दो, और ब्राह्मण हर रोज प्रार्थना करता है दियो यो नह, ये न वो दियो यो न प्रचोदया, दियो यो न प्रचोदया, हो भगवान मेरी बुद्धि को तेजस्वी मत बनाना, न प्रचोदया बोल रहा है दियो यो नफ प्रचोदयात होना चाहिए, नह अस्माकं दिह यह प्रचोदयति प्रेरयति, हमारे सबकी बुद्धि को भगवान आप तेजस्वी बनाए, क्या प्रार्थना है। कौन बनाए, जो सर्वज्ञ है वो मेरी प्रार्थना को जानता भी है और वो प्रार्थना को सफल करने में समर्थ है, क्योंकि सर्वसमर्थ सर्वशक्ति है, संकल्प मात्र से जिसकी सृष्टि हुई है वही परमेश्वर। निधये सर्व विद्यानां विषजे भवरोगिणां, एक रोग हुआ है हमको, वो क्या है, जन्म मृत्यु रूपी रोग। और ये रोग में एक बात, कोई ये नहीं कहता है मैं रोगी हूं और बहुत प्रसन्न हूं, नहीं हो सकता है। जो रोगी होगा वो क्या करता है, सब स्वरों में गाएगा, आ ऊ ई करेगा, है ना, कुछ ना कुछ तकलीफ है, डिस्कम्फर्ट है। और संसारी जो भी होगा वो क्या होगा, स्वामी जी आपसे बात करना है, मानी बात करना है क्या है, मैं कैसे आनंद स्वरूप प्रसन्न हूं, ये सब कहना है, नहीं महाराज मेरी अभी शादी हुई है और सास के साथ रहना पड़ता है, मैं अपनी सास के घर में जाके रहता हूं, आई एम घर जमाई हूं, बहुत तकलीफ है, लड़की अच्छी है उसकी मां गड़बड़ है, ये क्या हुआ, दुख है। दूसरा दुख यह है कि मेरे मित्र की बढ़ोतरी होती है वो मेरी नहीं होती है, एक जेलसी है ना, बहुत आश्चर्य है। दूसरा सुखी होता है ये देख के मैं दुखी होता हूं, दूसरा ज्यादा पढ़ता है देख के मैं दुखी होता हूं, ये क्या है? जेलसी है, इतना दुख है, सबको दुख है। भव रोग जन्म मृत्यु रूपी दुख, उसकी निवृत्ति के लिए कौन उसका वैद्य है? और वैद्य रोगों के दूर करते हैं, पर भव रोग को दूर करने वाले को दे, भव रोगिणाम विषजे वैद्य है। आपको मालूम होगा भगवान के समुद्र मंथन के समय जितने रत्न के रूप में ठाकुर जी प्रकट हुए, उसमें से एक अवतार अंतिम कौन सा था? धन्वंतरी, हाथ में सब औषधि को लेके आए। जो संसार औषधि के लिए उपाय कर सकते हैं, वो भव रोग के लिए क्या उपाय कर सकते हैं? पर एक ही उपाय है, वो भी आके आपको पढ़ाना पड़ेगा। अर्जुन भी भव रोग से पीड़ित था, तो भगवान ने उसको कितना भी चमत्कार दिखाया विश्वरूप का, उसका भव रोग दूर हुआ? विश्वरूप देख के भी डर गया भगवान, इससे डर लगता है क्योंकि आप मेरे से अलग है तो डर लगता है। एक ही उपाय है, भगवान को भी पढ़ाना पड़ेगा कि तू पूर्ण है। और कोई नान्य पंथा विद्यते नाय, सर्वलोकानाम गुरवे, इस लोक परलोक में जितने हैं इंद्रादि के भी गुरु कौन है? दक्षिणामूर्ति। फिर ये बोले दक्षिणामूर्तये नमः, ओम श्री दक्षिणामूर्तये नमः। ठीक है, मैं 8:30 बजे छोड़ दूंगा आपको समय से। ओम शांति शांति शांति।